Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम शरीर के भोजन पर तो कितना परहेज करते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये हमारे लिए पौष्टिक है, ये हमारे लिए हानिकारक है। क्या उसी प्रकार हम अपने मन के भोजन पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं? क्या हम पॉजिटिव विचार, जो कि सही रूप में हमारे मन का भोजन है, क्या हम रोज़ अपने आप में उसकी थोड़ी थोड़ी खुराक ले रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ये ज़रूर सोचें कि आप किस तरीके का इनपुट अपने अंदर रोज़ दे रहे हैं, क्या वो नकारात्मक विचार है या सकारात्मक विचार है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो कि एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं मन की। कहीं ना कहीं हमारा मन इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि हम अपने आप को नियंत्रण, अपने अंदर का जो नियंत्रण है हमारा, वो खोसा जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी ऐसी बीमारियाँ जिसमें हार्ट डिजीज़ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हार्ट अटैक से किस तरीके से अपने आप को ओवरकम करें, आफ्टर हार्ट अटैक कौन सी ऐसी सिम्टम्स है जो हमें बहुत ज़्यादा ग्रसित कर रहा है, और उससे बाहर कैसे निकले, अगर आप हमें बता सके तो बहुत अच्छा होगा।
जो हार्ट अटैक है उसका सिम्टम हम पहले भी डिस्कस किए
जी,
छाती में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना आना, और फिर उसके साथ ऐसा लगना कि मैं अभी मृत्यु होने वाली है
जी,
ऐसा फील होना अंदर से, ये निशानी है कि अभी हार्ट अटैक आया है
जी।
और उसका फिर इलाज है, एक तो मेडिकल इलाज है, इमरजेंसी में पेशेंट को हम ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ ECG करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और उनका फिर ऐसी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देती हैं, और या फिर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। अगर आपके पास ऐसा हॉस्पिटल है पास में ही, 3 घंटे के अंदर आप एंजियोप्लास्टी कर दें, और पेशेंट जब स्टेबल हो जाता है तो थोड़े दिनों बाद उसकी हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं
जी।
अगर हमारे फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम 15 दिन के बाद या महीने के बाद उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, फिर ब्लॉक होते हैं तो उनका एंजियोप्लास्टी करते हैं। पर एंजियोप्लास्टी कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है
जी।
और आवश्यकता भी है कि नहीं एंजियोप्लास्टी की।
अच्छा।
और फिर या मल्टीपल ब्लॉक से तो बाईपास करते हैं, किंतु पिछले कुछ सालों में हालांकि एंजियोप्लास्टी में भी एडवांसमेंट्स हुई हैं और बाईपास सर्जरी में भी एडवांसमेंट्स हुई। तो बाईपास सर्जरी में तो आजकल पहले क्या करते हैं, पहले तो वेंस, पैरों से वेंस लेकर के हम उनको ग्राफ कर देते थे, यहाँ से लेकर रिवर्स करके वेंस को, और वो मेन नस जिसे अल्टा कहते हैं वहाँ से कनेक्ट करके, और दूसरा एंड जो ब्लॉकेज है उसके आगे जोड़ देते।
अच्छा,
राइट। तो बाईपास इसके लिए, बाईपास ब्लॉक, बाईपास ब्लॉक वहीं पर है तो बाईपास हो गया, ब्लॉक बाईपास हो गया। तो बाईपास में ब्लॉक निकालते नहीं, वहीं रहता है, तो उसको बाईपास कर दिया जाता है ताकि वो रास्ता जो बंद हो गया उसके बाद फ्लो आ जाए, ऊपर से आ जाए
जी।
ऐसे ही हम लोग पैरों से ले लिया तो ऐसे करते थे, पर वो जल्दी बंद हो जाती थी।
अच्छा।
तो अभी क्या कर रहे हैं कि छाती के अंदर से ही एक आर्टरी ले लेते हैं, दो भी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आर्टरीज होती हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, मतलब जो चेस्ट की वॉल को सप्लाई देती हैं
जी,
तो उसको ले करके और वो आगे जोड़ देते हैं।
ओके।
तो वो हो गई, प्लस हाथ से ले लेते हैं, हाथ में भी यूजली लेफ्ट साइड की जो रेडियल आर्टरी होती है जिसमें नब्ज देखते हैं, वो आर्टरी काट लेते हैं, वो काट के फिर हार्ट में जोड़ सकते हैं, एज ए ग्राफ्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ्ट लंबा समय चलते हैं, तो ये नई जो टेक्नोलॉजी है इसको आर्टरियल ग्राफ्ट कहते हैं।
ओके।
वो वीनस ग्राफ्ट जल्दी बंद होते थे, ये आर्टरियल ग्राफ्ट लंबे समय चलते हैं, फिर भी देखने में आर्टरियल ग्राफ्ट होने के बाद भी आर्टरीज बंद हो जाती है, कभी सूचर में डिफेक्ट, सूचर लगाते समय उसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसके कारण भी हमारे बाईपास फेल हो जाते हैं। और कई बार जो है हमारी जो अंदर का जो मानसिक स्थिति, जो आप मन की बात कर रहे थे, अगर हम मानसिक स्थिति को ना बदलें तो भी हमारे बाईपास फेल हो जाते हैं।
ओके।
ऐसे ही एंजियोप्लास्टी की बात है कि एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं उसमें स्टेंट लगाते हैं, आजकल लेटेस्ट जो है मेडिकेटेड स्टेंट्स हैं, मतलब उसमें ऐसी मेडिसिन लगाई जाती है कि वहाँ वापस ब्लॉक ना हो।
ओके।
किंतु ये देखने में कि अगर ब्लॉक की परसेंटेज जो 30-40% थी स्टेंट लगाने के बाद, जो बेयर मेटल स्टेंट्स थे, बेयर मेटल मना उसके ऊपर दवाई बिना मेडिकेशन वाले थे।
ओके।
तो अभी वो घट करके 5-10% हो गया। अरे खतरा जो और आ गया वो खून जमने का, जहाँ स्टेंट लगाते हैं वो लोहे का स्प्रिंग होता है, स्टील का स्प्रिंग होता है, उसके अंदर खून जम जाता है।
ओके।
वो फिर अचानक हार्ट अटैक उससे आ सकता है। और उसके लिए भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि उसको कैसे कुछ मेडिसिन बनाई गई हैं कि वो क्लॉट ना बने, खून ना जमे।
जी, अभी ये ट्रीटमेंट्स तो हमने करा लिया, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है या फिर एंजियोग्राफी है, ये सब हमने करा करके अपने आप को बाईपास भी करते हैं हम। ये सब करने के बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं ऑन अ पेशेंट?
जैसे बताया मैंने आपको कि बाईपास, एंजियोप्लास्टी
जी,
और ये जो हमने जो भी ट्रीटमेंट्स हैं ये कुछ टाइमिंग के लिए हैं
जी,
परमानेंट नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है।
ओके।
इसको बोलते हैं पेलेटिव क्योर। पेलेटिव माना कुछ समय के लिए, जैसे कैंसर का एडवांस पेशेंट हमें पता है इसकी डेथ होने वाली है, और कुछ समय के लिए जब तक वो जिए, उसकी नाक में ट्यूब डाल दी, गले से उसको खाना खिला रहे हैं, पेशाब की नाली में पेशाब को कर दिया, या कुछ भी, जो ये जो बाईपास है या एंजियोप्लास्टी है, ये परमानेंट क्योर नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है
जी।
क्योंकि ब्लॉक हमारे बचपन से होने लगते हैं, 4 साल की उम्र से होने लगते हैं, और ब्लॉक धीरे धीरे होते होते आपको 30 में अटैक आया, 35 में अटैक आया, 40 में अटैक आया, तो ब्लॉक धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, और आप उसकी एंजियोप्लास्टी करके उसमें बैलून डाल के और स्टेंट डाल देते हैं, और आपने उस ब्लॉक को डायलेट कर दिया, राइट। ऐसे बाईपास को हमने बाईपास कर दिया, बाईपास में ब्लॉक को हमने बाईपास कर दिया। तो ये जो ब्लॉक हुआ क्यों था, वो क्यों हुआ था, इस पे बहुत रिसर्च अभी हो रही है।
ओके।
कि ब्लॉक हुए क्यों, किसी व्यक्ति को तो इतने सारे ब्लॉक हो जाते हैं, किसी को एक ही ब्लॉक होता है, और किसी को सब कुछ करने के बाद भी ब्लॉक नहीं होते, इसका मतलब क्या है। तो इस पे इसलिए कहा गया कि जो बाईपास एंजियोप्लास्टी हुआ रिलेटिव ट्रीटमेंट है, और उसको उसका जो है, जैसे वो ऐसा ही जैसे पेड़ को ऊपर से काट देना, जैसे ही हवा पानी फिर मिलेगा पेड़ को, तो वो फिर जड़ तो अंदर ही है, फिर पेड़ बड़ा हो जाता है
जी।
तो ये रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम बाईपास को कभी टाइम पास भी कहते हैं, टाइम पास में कुछ समय टाइम आपने खरीद लिया,
करेक्ट,
मे बी वो दैट में लास्ट इसको 2 साल, इसको 5 साल, किसको 8 साल, किसको 10 साल, एवरेज पीरियड 8 साल है बाईपास। एंजियोप्लास्टी का जो एवरेज पीरियड आफ्टर वन एंजियोप्लास्टी, एवरेज पीरियड 10 महीने है, कि जब दोबारा एंजियोप्लास्टी करने की आवश्यकता पड़ेगी।
ओके।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज में दिखाया गया है कि बाईपास का एवरेज पीरियड 8 साल और एंजियोप्लास्टी का एवरेज पीरियड 10 महीना।
ओके।
दैट मींस यू हैव टू बी रेडी एवरी ईयर एक एंजियोप्लास्टी करने के बाद,
करेक्ट,
राइट। तो अब जो है इसके ऊपर क्या बताया गया, कि बताया गया पिछले रिसर्च जो 91 से डी नॉर्निश की जब स्टडी आई थी, डीन ऑनिश ने शो किया था कि हमारे मन का बड़ा भारी रोल है हमारे ब्लॉकेजेस पैदा करने में।
अच्छा।
जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, माता पिता से जीन्स मिलते हैं, वो हैं, कि तो जीन्स को उभारने में, बीमारी का रूप देने में हमारे मन का बहुत रोल है।
ओके।
जो नकारात्मक विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे नेगेटिव सोचने का ढंग है, हर बात में प्रेशर फील करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शन का प्रेशर, कंपैरिजन कंपटीशन रखना, चिंता करना, एंजाइटी, जब तक काम पूरा नहीं हो तो एक चिंता, एक मन में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा
जी।
अपने मन में जो है आप उदास हो जाना, कोई बात को फील कर लेना, सेंसिटिव नेचर, किसने कुछ कह दिया आपके ऊपर, कमेंट कर दिया, आपको विचार ही चलते रहेंगे, इसने ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो इतना करती हूँ, तो विचार चलते हैं, भावुक हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, गुस्सा, इरिटेशन, रोब डालना दूसरे पर, सिनिसिज्म, सिनिसिज्म माना फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष निकालना,
तो ये भी हार्ट डिजीज,
ये भी हार्ट डिजीज के लिए, जो ऐसे लोग होते हैं उनको ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। हॉस्टाइल बिहेवियर, हॉस्टाइल माना अगर आप रिवेंजफुल बिहेवियर कहते हैं, हॉस्टाइल में रिवेंजफुल बिहेवियर, किसने आपके साथ गलत कर दिया, आपने मन में उसको धारण कर लिया कि ये व्यक्ति को जब तक मैं इसको बदला ना ले लूं तो मुझे चैन नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों को तो बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं, लंबे माना पूरी की पूरी, ये तो एकदम पॉइजनस बिहेवियर है, बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं। ऐसे लोग जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं, टेंशन जो है, जो टेंशन होती है, टेंशन सबकी लाइफ में होती है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर है जिसको टेंशन ना होती हो, तो वो उस बातों को शेयर कर लें तो आपकी बीमारी कम हो सकती है।
पर डॉक्टर साहब, शेयर करने की बात अगर हम करें, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट हो, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट लोगों को बीमारी हार्ट की ज़्यादा होती है, ये कह सकते हैं?
हाँ, इंट्रोवर्ट लोगों को ज़्यादा होती है। इंट्रोवर्ट जो अपने को आइसोलेशन फील करते हैं,
हाँ जी,
अपने मन की लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं,
हाँ जी,
अपने इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं होती, किसी पर ट्रस्ट नहीं होता
बिल्कुल
कि अपने मन की बातें शेयर करके हल्के हो जाएं।
करेक्ट।
क्योंकि विदेशों में भी देखा गया, जो लोग अपने मन की बातें शेयर कर लेते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है।
ओके।
इवन जो डॉग से कर लेते हैं, पेट डॉग से अपने मन की बातें शेयर कर लेते हैं, एक स्टडी की थी बर्कमैन एट ऑल ने 1992 में, उसमें शो किया गया था कि जो लोग इवन डॉग से या पेट कैट से या कोई भी आपके पेट एनिमल है उससे भी आप सब कुछ बोल दीजिए जो 7 दिन में बीता, तो आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी और आपका हार्ट अटैक भी कम आएगा।
पर डॉक्टर साहब, इसका रीज़न क्या है? क्या ये आउटलेट बहुत ज़रूरी है?
ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी।
ओके।
क्योंकि वो स्ट्रेस एक कुमुलेटिव इफेक्ट होता है
जी।
जो स्ट्रेस आपने, सपोज मैंने आज स्ट्रेस सबको आती है, आज की स्ट्रेस, कल की स्ट्रेस, परसों की स्ट्रेस, तरसों की स्ट्रेस, वो सब कुमुलेटिव इफेक्ट होता है और उसका फिर इफेक्ट हमारी कॉरोनरी आर्टरीज पर पड़ता है।
ओके।
हमारी जो अंदर की लाइनिंग है एंडोथेलियम, उस पर डैमेज होता है और वहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट तेजी से होता है।
ओके।
दिन रात कोलेस्ट्रॉल फिर डिपॉजिट बनता भी, जब आप स्ट्रेस अंदर बिल्डअप होती है तो आपका लीवर भी ज़्यादा मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और जब स्ट्रेस पाइल्ड अप अंदर है तो आपका दिल भी ऐसे अंदर से होता है कि आप मीठा खाएं, तला हुआ खाएं, जब मूड खराब हो जाए तो फूड भी खराब हो जाता है, विल पावर खत्म हो जाती है टू टेक द राइट फूड, हेल्दी फूड खत्म हो,
और फिर उस वक्त हम टेस्ट की तरफ चले जाते हैं ना कि हेल्थ की तरफ,
क्योंकि हम खुशी, हमारे अंदर खुशी नहीं है,
हाँ जी,
तो खुशी हम बाहर ढूंढने लगते हैं, खाने में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, दूसरे हमारी महिमा करें, टेलीफोन पे लगे रहेंगे, बातें करने में, इन्हीं बातों में फिर सोचते हैं हमारा सुख है, खुशी है, तो उस खुशी, वो खुशी खतरनाक खुशी है जो एडिक्शन पैदा कर देती है,
और टेम्प्रेरी भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं वो हमेशा आपके साथ
नहीं, वो जब आपका साथ छोड़ के जाएगा तो आपको बहुत दुख होता है,
बहुत ज्यादा,
बल्कि उससे हार्ट अटैक आ जाता है।
ओके। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आसक्ति किसी भी चीज की वो आपको हार्ट डिजीज की तरफ लेके जाता है? ओके।
बेसिकली हम इसको कहते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी कहते हैं हार्ट डिजीज को, कि आपकी अगर पति पत्नी है, आपकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, आप अपने मन की बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पति पत्नी में फॉल्ट ढूंढ रहा है, पत्नी पति में फॉल्ट ढूंढ रही है, या हॉस्टाइल बिहेवियर आपस में हो गया, या इगोइस्टिक बिहेवियर हो गया, दो लोग आपस में, वो समझती मैं मेरी बात माननी चाहिए, वो समझता मेरी बात माननी चाहिए, तो दोनों गुस्सा में, दोनों को एंगर भी ज़्यादा आता है, सेंसिटिव भी ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल भी ज़्यादा होते हैं, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, एंग्जाइटी भी ज़्यादा रहती है, पता नहीं क्या होगा, शेयर भी नहीं कर पाएंगे अपने मन की बातें। इस पे एक आपने सुना होगा पहले, आज अभी तो नहीं दिखते ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर, आज से 40 साल पहले लगभग ऐसा होता था, कुछ ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर लिखा रहता था, एक स्लोगन लिखा रहता था, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। अगर आप अपने मन की हर बात शेयर कर लेते तो शायद आपको हार्ट अटैक ना आता, हार्ट की बीमारी ना होती। तो ये जो कारण, इन पर बहुत सारी रिसर्चेस, अच्छे अच्छे जर्नल्स जो हैं, अमेरिकन हार्ट जर्नल, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल्स, या फिर अपने अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल्स, जो मतलब बड़े रेपूटेड जर्नल्स हैं, उन जर्नल्स में इस पर बड़ा, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट में बहुत सारे आर्टिकल छपे 91 ऑनवर्ड्स, बल्कि 88 से छपने शुरू हुए थे, और उसमें बताया गया टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, कैसे इन लोगों को कितनी परसेंट हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, कई गुना हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, और ये माइंड के फैक्टर्स जो हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ही दिमाग में है ना, एक ही माइंड में है ना, जल्दी भी उसी में है, चिंता भी उसी में है, गुस्सा भी उसी में है, उदासी भी उसी में है, सेंसिटिव नेचर भी उसी में है, भावुकता भी उसी के अंदर है ना, और अगर सिनिसिज्म भी उसी में है, हॉस्टिलिटी भी उसी में है, मन की बातें शेयर नहीं करते तो सब टेंशन भी अंदर ही जमा हुए, तो एक दिमाग में वो फिर हार्ट के ऊपर कितना ज़्यादा गुना आपके हार्ट को डैमेज करेगा। तो ये जो है पिछले 25 साल में इसमें बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, और उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया है कि कैसे हमारे विचार हमारे हार्ट को, हार्ट अटैक को ट्रिगर करते हैं।
ओके।
एक होता है हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना, जरूरी ब्लॉक होने वाले को हमारी हार्ट अटैक आए, राइट, पर उसको ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, ट्रिगर समझते हैं?
हाँ जी।
जैसे पिस्टल में होता है ट्रिगर होता है
जी।
अगर पिस्टल पड़ी है उसको ना ट्रिगर करो तो क्या होगा, पड़ी रहेगी। अच्छा स्पार्क भी, जैसे स्कूटर में स्पार्क होता है, वो स्पार्क ट्रिगर ना हो तो स्कूटर चलेगा नहीं। कार में भी स्पार्क होता है, वो जब तक वो ट्रिगर नहीं हो तो कार चल नहीं सकती। ऐसे ही हार्ट अटैक आने के पहले ट्रिगर चाहिए, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ट्रिगर के रूप में काम करते हैं, ये ट्रिगर कर देते हैं हार्ट अटैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कई सारी ऐसी रिसर्च आई। और एक 2004 में एक बहुत बड़ी रिसर्च, एक माइलस्टोन रिसर्च कह सकते हैं वो, इसको बोलते हैं इंटर हार्ट स्टडी।
ओके।
और वो स्टडी ऐसी थी जो 30,000 लोगों पे की गई, 30,000 मेल फीमेल में, मैन भी थे वुमेन भी थी, लेडीज भी थी और मेल्स भी थे। और वो स्टडी पचास देशों में की गई, 52 देशों के उसमें पेशेंट थे, और पांचों कॉन्टिनेंट के थे, एशिया के भी थे, यूरोप के भी थे, ऑस्ट्रेलिया के भी थे, अमेरिका के भी थे, अफ्रीका के भी थे, तो सब देशों के लोग पेशेंट उसमें ले गए। और उसमें ये स्पेशली देखा गया कि मेंटल स्ट्रेस, कैसे मन के अंदर जो टेंशन होती है
जी,
तनाव पैदा होता है, वो प्लस गलत खान पान, सैर ना करना, फ्रूट्स ना खाना, ऐसे कुछ फैक्टर्स, डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, मोटापा होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब 9 फैक्टर उन्होंने लिए थे। उन्होंने इसको लेकर स्टडी किया कि ये अगर फैक्टर्स हैं तो इनको जो है, अगर हम जिनमें ये 9 फैक्टर्स होते हैं उनको हार्ट की बीमारी कहीं ज़्यादा होती है।
ओके।
अगर उनके उनके लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए, ये सारे जीवन शैली के फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं जो 9 बातें मैंने की, ये अगर जीवन शैली को बदल दिया जाए, जीने का ढंग बदल दिया जाए, भोजन बदल दिया जाए, रोज डेली फ्रूट खाएं, मेंटल स्ट्रेस को मेडिटेशन से ठीक कर लिया जाए, तो फिर आपकी 90% से अधिक बीमारी कम हो सकती है हार्ट की।
okay.
जो एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है।
बिल्कुल।
बड़ा अच्छा एक प्रूफ आया जो इतने बड़ी स्टडी में आया। और जो एक ये भी साथ में एक रिसर्च आई 2006-2007 में, जो रिसर्च उसके बाद 2004 में पब्लिश होने के बाद, कि जो एंजियोप्लास्टी करते हैं हम, एंजियोप्लास्टी करने के बाद हार्ट ना तो मृत्यु कम होती है, ना तो हार्ट अटैक का आना कम होता है, बल्कि और ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं एंजियोप्लास्टी करने के बाद। ये हालांकि आजकल क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी कर लिया अब खतरा नहीं है, बल्कि एंजियोप्लास्टी फैक्ट ये है, एंजियोप्लास्टी करने के बाद ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, ट्रेंड टुवर्ड्स मोर इन्फार्क्शंस, री इन्फार्क्शन, दोबारा हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसकी अंदर की आर्टरी को डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ठीक है, within 3 hours हार्ट अटैक हुआ, within 3 hours आपके आसपास कोई सेंटर है वहाँ जाके आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, स्टेंट लगवा लीजिए, वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो बाद में एंजियोप्लास्टी जो करते हैं, ब्लॉक देखा और एंजियोप्लास्टी कर दी, ब्लॉक देखा एंजियोप्लास्टी, इट हैज़ नो मीनिंग। जो आज ट्रेंड हो गया ना, ब्लॉक देखा एंजियोप्लास्टी, ब्लॉक देखा एंजियोप्लास्टी कर दी, स्टेंट लगा दिया, इट हैज़ नो बेनिफिट टू द पेशेंट।
डॉक्टर साहब, पर हार्ट डिजीज़ की बात करें, हार्ट अटैक की स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आता है?
यस, एक्चुअली क्या है, पिछले हमने जो रिसर्च 18 साल से जो हम कर रहे हैं
जी,
हमने February 1998 में हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर, और तब से हमने 129 ग्रुप अभी तक कर चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा जिन पेशेंट्स की एंजियोग्राफी हो चुकी थी और जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी करने को बोला गया था, या जिनके बाईपास फेल हो गया, जिनकी एंजियोप्लास्टी फेल हो गई, वो हमने रिसर्च में अपने ग्रुप्स में पेशेंट बुलाए हैं
जी,
और उनको हमने इसमें स्टडी किया, इस रिसर्च में स्टडी किया, और हमने ये पाया है, ये मैं बाद में डिटेल में शेयर करूँगा, कि हर ब्लॉक के पीछे हमारे थॉट पैटर्न्स, सोचने का ढंग है। जब तक हम सोचने के ढंग को ना बदलेंगे, तो हम कितना मर्जी अपने आप को चेंज कर लें, 0 ऑयल डाइट खा लें, रोज सैर कर लें, समय पर सो जाएं, उठ जाएं, भी एडिक्शन भी छोड़ दें, वो भी ना तो हमारे हार्ट अटैक कम होंगे, ना हमारे ब्लॉकेज कम होंगे, बल्कि और बढ़ेंगे।
okay.
ऐसा हमने पाया है, तो उसकी डिटेल हम बाद में लेंगे। जब मैं दिल्ली में एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट कार्य कर रहा था
जी,
तो मैं देखता था अपनी डेली की प्रैक्टिस में कि लोग हमारे पास आके एंजियोप्लास्टी करा के जाते थे, है ना, बाईपास भी हॉस्पिटल में होते थे, और स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास में मैंने बताया हार्ट की बीमारी आनी शुरू हुई थी 90s में
जी,
जो पहले 60 साल की उम्र के बाद आती थी, अमीरों में आती थी, अभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आनी शुरू हुई थी, और 35 साल में भी हार्ट अटैक आने शुरू हुए थे, 94-95 की बात कर रहा हूँ
जी।
तो हम लोग अब उनको हार्ट अटैक आने के बाद उनको हम थोड़ा मैनेज करते थे, मैनेज करने के बाद उनको फिर हम कहते थे कि अभी आप एंजियोग्राफी कराइए, फिर दूसरे तीसरे दिन उनको एंजियोग्राफी करते थे। एंजियोग्राफी करने पर ब्लॉक मिलता था, इतना 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है। तो हम उनके पेशेंट के रिलेटिव जो बाहर बैठे उनसे डिस्कस करते थे कि ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है, इसकी इतनी ब्लॉक है, तो इसकी तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, बाईपास करना पड़ेगा। तो समझाते थे पेशेंट्स को, तो पेशेंट के रिलेटिव्स क्या चाहते हैं उस समय, अगर एक ही आपको कमाने वाला है, उसको हार्ट अटैक हुआ तो क्या चाहेंगे पेशेंट के रिलेटिव, उसकी पत्नी क्या चाहेगी,
किसी भी तरीके से वो ठीक,
किसी तरह से वो ठीक हो जाए,
बिल्कुल,
भले उनके पास पैसे ना हो। हमने कहा भी आप इतने पैसे जमा करा दीजिए, 2 लाख रुपए जमा कराइए, तो पेशेंट के लिए पेशेंट क्या करेगा, वही थोड़ी ना कहेगा मेरे 2 लाख रुपए नहीं है। ओके डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे पति को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो फिर क्या करते थे वो, कई पेशेंट ने ऐसा किया मेरे सामने, मतलब जो बाद में पता लगा कि उन्होंने अपना घर बेच दिया, किसी पत्नी ने गहने बेच दिए अपने पूरे, और तब जाके उन्होंने एंजियोप्लास्टी करा ली, और फिर वो 3-4 महीने बाद फिर तब फिर बंद हो गए, फिर तकलीफ हुई हार्ट की, फिर हॉस्पिटल में लेके आए, फिर हमने उसको वही, हमारा तो वही प्रोसीजर है, हॉस्पिटल में तो यही प्रोसीजर होता था कि उसको मैनेज करो पहले एक्यूट स्टेज में, तो पेशेंट थोड़ा ठीक होने पे उनकी एंजियोग्राफी करो। एंजियोग्राफी दोबारा की तो देखा तो उसमें वो स्टेंट तो बंद हो गया था, दूसरे और ब्लॉक 2 नए पैदा हो गए थे। तो हम अब हम क्या करें, हम बताएंगे भाई आपका तो देखो वो स्टेंट बंद हो गया और आपकी 2 नई और ब्लॉकेज आ गई, 80 और आ गई, 60 और आ गई, अभी तो आप बाईपास करा लीजिए। तो डॉक्टर वो पेशेंट कहता था डॉक्टर साहब अभी तो जब आपने ना 4-3 महीने पहले जब कहा था, जब मुझे हार्ट तकलीफ हुई तो आपने कहा था मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी ने पता कैसे पैसे जमा कराए थे आपके पास, आप बताइए कि मुझे क्या पता कैसे जमा कराए। डॉक्टर साहब रातों रात मेरा घर बेच दिया मेरी पत्नी, हमारा 4 लाख का घर, 5 लाख का घर 2.5 लाख में बेच दिया। जब से एंजियोप्लास्टी कराए तब से मैं घर में बैठा हूँ, जो थोड़े पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए, अब मैं क्या बेचूं, अब मैं क्या बेचूं, ये जो शब्द था ये बहुत खतरनाक था। उससे मेरे को बहुत हर्ट हुआ, और फिर तब मैंने इस पर सारा ध्यान अपना इसकी खोज में लगा दिया कि बीमारी क्यों होती है, ब्लॉक बार बार क्यों होते हैं, हार्ट अटैक क्यों होता है, क्यों ट्रिगर होता है। किसी को तो एक बार हो गया सारी उम्र दोबारा नहीं होता, किसी को 3 महीने में वापस दोबारा हार्ट अटैक हो रहा है, एंजियोप्लास्टी करने के बाद बंद हो रहा है, तकलीफ आ रही, घर बेचने के बाद भी तकलीफ आ रही है, गहने बेचने के बाद भी तकलीफ, तो क्या करें। तो भगवान की दुनिया में क्या ये इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, गरीबों का इलाज नहीं है, सिर्फ अमीरों का इलाज है, अमीर ही करा सकते हैं, गरीब आदमी जी नहीं सकता है क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब मेरा इंटरेस्ट इस तरफ गया दिल्ली में कार्य करते हुए कि वो जो है हार्ट अटैक होते क्यों है। हालांकि हम मेडिकली जानते थे कि हार्ट अटैक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ब्लॉकेज कैसे पैदा होते हैं, पर उसमें रियल ट्रिगर क्या थे, रियल कारण क्या थे, जो किताब में मेंशन नहीं थे गहराई से, टेक्स्ट बुक में नहीं थे, जर्नल्स में तो मेंशन थे, फिर जर्नल ढूंढे तो उसमें मिले आर्टिकल्स कि जल्दी करने वाले को, चिंता करने वाले को, गुस्सा करने वाले को, उदास रहने वाले को, अपने मन की बातें शेयर ना करने वाले को, जो मैंने अभी बताया शेयर किया थोड़ी देर पहले
जी, बिल्कुल,
सिनिकल बिहेवियर वाले, सिनिकल में दूसरों में दोष निकालने वालों को, बदलने की भावना रखने वालों को ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं
जी।
तो तब मेरे दिमाग चलने लगा इस तरफ, तब मैंने जो है ऐसे लेक्चर देने शुरू किए थे डॉक्टर्स की गैदरिंग्स में इसके ऊपर, स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज के।
डॉक्टर साहब आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी पर असर डालते हैं और ख़ासकर हार्ट पर। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने दिल का पूरा ख्याल रखें और पॉजिटिव सोचें। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति।
दोस्तों आज हमने क्या जाना, दिल की बीमारी जिसके बारे में आज कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, कई सारे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट्स सिर्फ टेम्प्ररी होते हैं। अगर आपको उसका परमानेंट इलाज करना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के संकल्पों को आपको बदलने की ज़रूरत है, अपने अंदर पॉजिटिविटी और ज़्यादा भरने की ज़रूरत है, और पॉजिटिविटी आपको स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही मिलेगी। तो बाकी सॉल्यूशंस और भी कुछ ऐसे रेमिडीज़ जो हमें हार्ट डिजीज़ से बाहर निकाल सकेंगे, उसकी रेमिडीज़ के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। थैंक यू। ओम शांति।